जय श्री कृष्णाचय तन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वसदे गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा श्याम सुंदरा दो श्याम सुंदरा थे जय प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा हरि बोल श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता शाखा देवी की जय श्री श्री गौर निताय की जय ग्रंथरा श्रीमद भागवतम महापुराण की जय भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरी हरी ज्यादा नहीं आवाज ज्यादा है ना थोड़ा सा कम करो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 30। अध्याय का नाम है प्रथु महाराज प्रथु द्वारा उपदेश। श्लोक दोहराएंगे। दोहित्रादि नृते मृत्यो दोहित्रादि नृते मृत्यो सोच्यान धर्म विमोहिता सोच्यान धर्म विमोहिता वर्गस्वर्गापवर्गाणा दोहित्रादीनृते मृत्यो सोच्यान धर्म विमोहिता वर्गा स्वर्गापवर्गाणा प्राणैकात्यम्य हेतुना प्रायेणैकात्यम्य हेतुना। आप लोग दोहराएंगे। दोहित्रादि नृते मृत्यो सोच्यान धर्म विमोहितो स्वर्ग सोच्यान धर्म विमोहिता शब्दार्थ दोहित्र आदिन मेरे पिता बैन जैसे दोहित्र रिते के अतिरिक्त मृत्यो मृत्यु के सोच्यान सोचनीय धर्म विमोहितान धर्म के पथ पर मोहग्रस्त हुए वर्ग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष स्वर्ग स्वर्गलोक तक ऊपर उठना अपवर्गाणा भौतिक कलमश से मुक्त प्रायेण प्रायः एक एक आत्म्य श्री भगवान हेतुना के कारण। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दोहित्र तथा मेरे पिता बैन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं। आवाज ठीक आ रही है इसकी आवाज? किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर वर्गों अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का अथवा स्वर्ग का एकमात्र दाता श्री भगवान है। ये कौन बोल रहा है? प्रथु महाराज बोल रहे हैं। ये साधारण नहीं बोल रहे, उपदेश दे रहे हैं। बोलना होता है एक जैसे, मतलब कभी कभी चलते चलते बोल देते हैं, हो सकता है कोई ग्रहण करे ना करे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बोलना ऐसा नहीं है, क्या है? उपदेश है, इनको ग्रहण करना ही है। तो ये जो भाषा जो बोली जा रही है उपदेशात्मक, मतलब किसी को शिक्षा देने के लिए, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये बोलना साधारण बोलना नहीं है। कैसा बोलना है? उपदेशात्मक बोलना है, शिक्षात्मक बोलना है। इसमें शिक्षाएं दी जा रही हैं। आगे चल करके देखें क्या शिक्षा मिल रही है इससे। तो तात्पर्य, प्रथु महाराज के लिए राजा वैन को ब्राह्मण तथा साधुओं द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा, क्योंकि उसने श्री भगवान के अस्तित्व का निषेध करते हुए भगवान को वैदिक यज्ञों द्वारा तुष्ट करने की विधि का बहिष्कार किया था। दूसरे शब्दों में वह नास्तिक था, उसका ईश्वर पर विश्वास न था और उसने अपने राज्य में वैदिक यज्ञों पर रोक लगा दी थी। प्रथु महाराज ने बैन के चरित्र को शोचनीय कहा है, क्योंकि धार्मिक कृत्यों के संपन्न किए जाने के विषय में वह मूर्ख था। शोचनीय की स्थिति का मतलब होता है, क्यों शोचनीय कहा है? जो धार्मिक कृत्यों को नहीं कर रहा है उसकी स्थिति कैसी है? शोचनीय स्थिति है। नास्तिकों का मत है कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भगवान की सत्ता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नास्तिक लोगों का कहना है, उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य काल्पनिक ईश्वर की स्थापना है जो मनुष्य को सचित्र न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था शांति के साथ चलती रहे। यही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि यह कार्य के लिए, इस कार्य के लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चरित्रता तथा नैतिकता के नियमों का अनुपालन पर्याप्त होगा। अच्छा चरित्र, अच्छी नीति, बस धर्म फर्म की कोई जरूरत नहीं। इस एपी सेंटर इसी प्रकार अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर यदि आर्थिक विकास के लिए श्रम किया जाए तो स्वतः आर्थिक उन्नति होगी। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति ईश्वर की कृपा के अधीन नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी भी साधन में प्रचुर धन अर्जित करता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ जहाँ तक मोक्ष का प्रश्न है, उनका कथन है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, किंतु महाराज प्रथु ने ऐसे नास्तिकों के प्रमाण को, जिनका अग्रणी मृत्यु का दोहित्र तथा उनका पिता वैन था, नहीं स्वीकार किया। सामान्यतः पुत्री पिता के गुण अर्जित करती है और पुत्र अपने पिता के गुण पाता है। इसी प्रकार मृत्यु की पुत्री सुनीता को अपने पिता के सारे गुण मिले और बैन ने माता के गुणों का उत्तराधिकार पाया। जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र के विधि विधानों द्वारा नियंत्रित होता है उसके विचार भौतिक ही बने रहते हैं। क्योंकि बैन ऐसा ही व्यक्ति था अतः वह ईश्वर को नहीं मानता था। आधुनिक सभ्यता राजा बैन के ही सिद्धांतों को मानती है, किंतु यदि हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें श्री भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। वैदिक साहित्य के अनुसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त विधि संहिता ही धर्म है। यदि कोई धर्म तथा नैतिकता के मामले में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो उसे बताना होगा कि एक ही नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न फल क्यों प्राप्त होता है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है, यह दो व्यक्तियों की नैतिकता ईमानदारी तथा सदाचार का स्तर एक सा हो तो भी उसके पद एक से नहीं होते। इसी तरह आर्थिक विकास के क्षेत्र में यह देखा जाता है, यह दो पुरुष समान रूप से अहनिश्रम करें तो भी परिणाम एक सा नहीं होता। एक व्यक्ति बिना किसी ऐश्वर्यवान बिना किसी काम के ऐश्वर्यवान हो जाता है, जबकि वही दूसरा व्यक्ति कठिन श्रम करके भी पेट भर भोजन नहीं पाता। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के विषय में है, कभी कभी पर्याप्त भोजन प्राप्त होने पर भी किसी किसी मनुष्य का शारीरिक जीवन सुखी नहीं रहता था। वह अविवाहित ही रहा जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति आर्थिक स्थिति के ठीक होने न होने पर भी इंद्रिय तृप्ति का अवसर प्राप्त करता है। मनुष्य की उपेक्षा कुकर या सुकर जैसे पशुओं को इंद्रिय तृप्ति के अधिक अवसर प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम मोक्ष को छोड़ दें और केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं धर्म अर्थ काम पर विचार करें तो भी हम देखेंगे कि प्रत्येक के लिए एक समान नहीं है। अतः यह मानना ही होगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो विभिन्न स्तरों को निश्चित करता है। कहने का तात्पर्य है कि न केवल मोक्ष के लिए अपितु तो इस जगत की सामान्य से सामान्य अवस्थाओं के लिए भी मनुष्य को भगवान पर निर्भर रहना होगा। अतः प्रतु महाराज ने यह संकेत किया कि धनी माँ बाप के होने पर भी कभी कभी उनकी संतानें सुखी नहीं रह पाती। इसी तरह कभी कभी कुशल से कुशल डॉक्टर द्वारा औषधि दिए जाने पर रोगी मर जाता है, अथवा बड़ी से बड़ी नाव होते हुए भी मनुष्य डूब जाता है। इस तरह हम प्रकृति द्वारा उपस्थित बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं, किंतु हमें तब तक सब सफलता नहीं मिलती जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। भूतैर्महद्भिः पुरा इमं विभो निर्मायसे ते यदमूस पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकं सोलंकृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। सोलंकृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है, हम सभी के लिए बहुत शिक्षाप्रद हैं और ये शिक्षाएं स्वयं प्रतु महाराज जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और विशेष करके भगवान की जो पालनी शक्ति है जिसके कारण भगवान इस जगत का पालन पोषण करते हैं उसी शक्ति के अवतार हैं महाराज प्रतु। तो कई सारे श्लोकों में महाराज प्रतु के उपदेश हुए हैं जिनमें कुल खुद कुछ श्लोक हैं या कुछ उपदेश हैं एक राजा के लिए दिए गए कि राजा को कैसा होना चाहिए और कुछ प्रजा के लिए भी दिए गए हैं। प्रजा को क्या करना चाहिए, केवल राजा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए सर्वप्रथम महाराज प्रतु का जो उपदेश था प्रजा के लिए कि एक राजा को चाहिए सर्वप्रथम प्रजा का ठीक ठाक से भरण पोषण करे और उसको संरक्षण प्रदान करे। प्रजा का मतलब होता है प्रजायति इति प्रजा, जो जन्म लेता है जो जन्म लेती है वो प्रजा है। तो प्रजा का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी प्रजा में आते हैं, पक्षी भी प्रजा में आते हैं, लता पता पेड़ पौधे भी प्रजा में आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रजा का मतलब है उनके राज्य में 84 लाख शरीरों में जो भी जीवात्माएं वास कर रही हैं वो सब प्रजा कही जाती हैं। इसलिए राजा का परम धर्म बनता है कि पूरी प्रजा के लिए समस्त जीवात्माओं के भोजन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करे। तो प्रश्न उठता है कि भाई आजकल तो मनुष्य के अलावा और किसी को प्रजा गिना ही नहीं जाता, है कि नहीं? प्रजा का मतलब मनुष्य, और देखा जाए तो मनुष्य को भी प्रजा नहीं गिनते। आजकल जो है जो जिसको चाहे मार सकता है,
जो जिसको चाहे कुछ भी कर सकता है कि नहीं? कोई सुरक्षा है किसी की? नहीं है। लेकिन वही जो है अन्य जो धार्मिक राजा हुए इस पृथ्वी पर, उनके चरित्रों से देख सकते हैं कि उन्होंने मनुष्य की तो रक्षा की ही, लेकिन अन्य जीवात्माओं की भी रक्षा की थी। जैसे महाराज शिवी का उदाहरण देखते हैं, महाराज शिवी ने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना सारा शरीर ही जो है काट काट करके उस पर चढ़ा दिया था, बाज को प्रसन्न करने के लिए, है कि नहीं? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते को न्याय दिलाने के लिए और जो है क्या नाम, एक साधु को पनिशमेंट किया, एक ब्राह्मण को पनिशमेंट किया। हालांकि ब्राह्मण को उपहार दिए, लेकिन मतलब उनके कहने से दिए। महाराज परीक्षित ने एक गाय की रक्षा करने के लिए कली को जो है पनिशमेंट दिया, है कि नहीं? हम देख रहे हैं, आप इतिहास में देख सकते हैं कि उन्होंने केवल मनुष्य की तो रक्षा की है, लेकिन साथ साथ में अन्य प्राणियों की भी रक्षा की थी। जब प्रचेतागण पौधों को जला रहे थे, अग्नि प्रकट कर दी थी अपने मुख से अग्नि हवा, तो उस समय स्वयं मनु महाराज आकर के, ब्रह्मा जी आकर के उनको रोके, भाई अरे तुम आगे चल करके सृष्टि को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारी सृष्टि खाएगी पिएगी कहाँ से? तुम पेड़ पौधों को जला दोगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो इसलिए प्रजा का मतलब होता है राजा के राज्य में, राजा की सीमा के अंदर जो भी जीव हैं उन सभी को उनको देखभाल करना चाहिए। पहले फल उनको भोजन दो और उनका संरक्षण प्रदान करना चाहिए। दूसरा जो है उनका उपदेश था, क्योंकि मनुष्य इन सारे जीवों में कुछ विशेष होते हैं, क्योंकि कई सारे अन्य अन्य शरीरों में अनेक अनेक जन्म तक घूमते घूमते करके मनुष्य शरीर में आते हैं, इसलिए उन्होंने जो है मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। कोई उनका वर्णाश्रम धर्म कोई अपना बनाया धर्म नहीं था, भगवान ने कहा है कि जो वर्णाश्रम है मेरे द्वारा प्रकट होता है, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, मया सृष्टम मैंने इसको सृष्टि किया है, मैंने इसको प्रकट किया है। जब सृष्टि के शुरू में जब भगवान विराट रूप उत्पन्न हुए थे, उनके मुख से जो है अलग अलग वर्ण निकले थे, ब्राह्मण भगवान के कहां से निकले थे? मुख से निकले थे। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, मुख का मतलब है केवल खाने तक ही नहीं, मुख के अंदर पूरा चेहरा आ जाता है। तो ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए उसको ठीक से देखना चाहिए, ठीक से देखने का मतलब शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए, सुनना चाहिए उसको ठीक से, शास्त्र की दृष्टि से सुनना चाहिए। लोग तो क्या क्या बोलते रहेंगे, सभी लोगों की बात को नहीं मानना चाहिए, शास्त्र क्या बोलते हैं, है कि नहीं? और मुख से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो भगवान के मुख से जो है क्या नाम है, ब्राह्मण प्रकट हुए थे, क्षत्रिय भुजाओं से प्रकट हुए थे। तो भुजाओं का काम है इकट्ठा करना, किसी चीज को लाना, तो इसलिए जो क्षत्रिय हैं ये शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, कोई भी काम आना होता है मारपीट का तो सबसे पहले कौन जाता है, हाथ काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो इसलिए भुजाओं मतलब सामग्री इकट्ठा करना है और सुरक्षा की सामग्रियों को विशेष करके इकट्ठा करना, तो क्षत्रिय काम है सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा वर्ण आता है जो वैश्य वर्ण है, वो पेट से उत्पन्न हुआ है, जैसे पेट में कुछ भी डालो वो सारे शरीर को यथावत बांटता रहता है, ऐसे वैश्य को जो है कमाना चाहिए और फिर वितरण करना चाहिए। और शूद्र है जो पैरों से प्रकट हुए हैं, शूद्र का काम है जैसे पैर का काम क्या है, शरीर को ढोकर के चलना, तो ऐसे ही जो शूद्र का काम है जो तीन वर्ण है उनकी जो है सहायता करते रहना, उनकी कार्य में हस्तक्षेप बटाना। तो भगवान से ये चार वर्ण उत्पन्न हुए हैं और साथ साथ में व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था भी उत्पन्न हुई है, भगवान से मतलब व्यवस्था उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार जो है ये उन्होंने ये शिक्षा दी थी समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू की जाए। तीसरा सिद्धांत है राजा को प्रजा के ऊपर केवल कर ही नहीं लगाना चाहिए, टैक्स टैक्स टैक्स, इसका टैक्स उसका टैक्स। कुछ दिन पहले सब्जी पे टैक्स लगा था, खाने पीने की वस्तुओं पे टैक्स लगा तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, खाने पीने की है कि नहीं? कुछ दिन पहले तो लगाया, अभी 8-10 साल हुए, कितना साल हुआ, 15-20 साल कितना हुआ, इतना ही हुआ है। खाने पीने की वस्तु पर टैक्स लगा दिया, लेकिन राजा को इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए, जो राजा केवल टैक्स कलेक्ट करता रहता है उसका जो है धीरे धीरे करके क्या होता है, वो ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है, उसकी जो है पदवी चली जाती है, उसका ऐश्वर्य सारा चला जाता, छिन जाता, और अंत में क्या होता है, अंत में जो है नरक शरीरों को प्राप्त करता है, निम्न शरीरों को चला जाता है। तो इसलिए टैक्स नहीं लगाना चाहिए। चौथा जो है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो राजा होता है वो राजा प्रजा के पुण्यों को पापों को भी ग्रहण करता है। तो इसलिए यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा धार्मिक होगी, धर्म का पालन करेगी, तो प्रजा का फल भी किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा। तो जो राजा धार्मिक होगा उसकी सदगति होगी, ये निश्चित है। लेकिन राजा धार्मिक है तो चूंकि उसका भी पाप रहेगा और प्रजा का पाप रहेगा, तो इससे क्या होगी, उसकी दुर्गति हो जाती है, वो नरकों में चला जाता। इसलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए। और जो है प्रजा को ऐसा नहीं किसी का भी जो है मान, किसी ने भी कुछ कहा और उसका मान लेना चाहिए। बहुत सी जगह हम देखते हैं, बहुत सारे सुनने में आता है, जो कभी कभी हम जब सत्संग में जाते हैं बाहर तो लोगों से सुनने के लिए आता है कि जी हमने तो ऐसा सुना था, वो ऐसे नहीं ऐसे था, हमने तो सुना था कि जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से जो फल मिलेगा वो शिव जी का भी ऐसे ही करे तो वही फल मिल जाएगा। किससे सुना था, तो वहां जो है एक माता जी बोल रही थी या कोई प्रभु बोल रहे थे या कोई बोल रहे थे, तो ठीक है जो बोल रहे थे, लेकिन देखना चाहिए उनका स्तर क्या है। कोई भी ज्ञान हर किसी चलते फिरते किसी से भी नहीं लेना है, हमेशा जैसे पीछे के श्लोकों में हम सुने हैं कि जो है एक उन्हीं व्यक्तियों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जो वास्तव में धर्म के पथ पर चले हैं, धर्म के पथ पर चल करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की है, सदगति को प्राप्त किया है, प्रजा भी जो है उच्च लोकों को प्राप्त की है, तो केवल ऐसे ही व्यक्तियों के उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए और प्रजा को विशेष करके ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण में ही रहना चाहिए जो वास्तविक धार्मिक है। आस्तिक राजाओं के संरक्षण में रहना चाहिए, जैसे पीछे जो है उसमें नाम आए थे, जैसे मनु महाराज, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, पितामह भीष, प्रहलाद, बलि, महाजन, 12 महाजन, ये सब कैसे थे, धार्मिक थे। तो ऐसे व्यक्तियों के उपदेश को ही ग्रहण करना चाहिए और जरूर ग्रहण करना चाहिए, प्रजा को कभी भी फ्री नहीं रहना चाहिए। प्रजा का मतलब हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी एक प्रजा हैं, तो इसलिए हमें भी एक योग्य गुरु के या गुरु के जो प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में हमें भी रहना चाहिए, उन्हीं से गाइड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी कहीं भी जाकर के कहीं से कुछ सुन करके आ गए और अपना मनमानी फिर करने लगे, इसमें हम धोखा खा सकते हैं। बात समझ में आया है, तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है उपदेश दे करके आज के श्लोक में विशेष करके प्रथु महाराज थोड़ा शोक कर रहे हैं। किसके लिए शोक कर रहे हैं, तो अपने पिता बैन के लिए शोक कर रहे हैं। देखो समाज में कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उससे समाज की एक प्रशंसा बढ़ती है और वो समाज जो है एक ऊंचा सर करके जीता है। लेकिन जिस समाज में कोई उच्च व्यक्ति जो लीडर दुष्ट स्वभाव का हुआ तो वास्तव में उसके कारण समाज की भी सर क्या होता है, झुकता है, नीचे झुक जाता है। तो यहां पर जो बताया जा रहा है प्रथु महाराज क्या कर रहे हैं, सोच्यान शोक कर रहे हैं। जैसे परिवार में मान लीजिए कोई शराबी हो जाता है तो उसके लिए शोक होता है कि नहीं होता है, दुख दुख होता है कि नहीं मन में, क्या करें बड़ा निर्लज्ज निकल गया है, वो तो शराब के अलावा और कुछ उसको तो दिखाई नहीं देता, करते हैं कि नहीं करते हैं शोक। कोई पापी हो, नास्तिक हो, अधार्मिक हो, तो ये सब कैसी स्थिति के हैं, शोक करने की स्थिति के हैं। सोच्यान, इनकी स्थिति कैसी है, सोचनी अब स्थिति है, क्योंकि ठीक स्थिति नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, यदि परिवार में कोई धार्मिक नहीं है तो वो व्यक्ति वास्तव में कैसी स्थिति का, एक सोचनीय स्थिति का है, मतलब उसके लिए एक बड़ा मन में कष्ट होता है, वो दयनीय स्थिति की है उसकी, बहुत खराब स्थिति है। क्यों खराब स्थिति है, क्यों सोचनीय स्थिति है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है, तान अहम दूषित कुरुरान संसारेशु नराधमान छिपामी अजस्र असवान आसुरी एवस योनिसु। जो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों को नहीं करता है, अधार्मिक रीति से अपना जीवन यापन करता है, तो बोलते हैं कि भगवान तान अहम दूषित क्रूरान, क्रूर ऐसे निर्दय निर्लज्ज को भगवान बोलते हैं, दूषित क्रूरान संसारेशु नर अधमान, संसारेशु जो संसार में नर अधमान, जो नीच नीच जो शरीर हैं, उन शरीरों में मैं क्या करता हूं, उसको जन्म देता रहता हूं, मनुष्य शरीर भी उसको मुश्किल से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति नास्तिक है, अधार्मिक है, पापी है, दुराचारी है, चोरी करने वाला है, ज्वारी है, शराबी है, तो ये सब कैसी स्थिति वाले हैं, सोच्यान सोचनीय स्थिति वाले हैं। इन पे हमें दया दिखाना चाहिए, दया आनी चाहिए इनके प्रति, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए सोच्यान मतलब शोक कर रहे हैं, क्यों शोक कर रहे हैं भाई, क्या कारण है, तो बोल रहे हैं धर्म विमोहितान, इसलिए शोक कर रहे हैं कि बोला पूरा वो नास्तिक था, अधार्मिक था। शोक किसके लिए होना चाहिए, अधार्मिकता। यदि बच्चा धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है तो वास्तव में वो दयनीय स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ी मन में करुणा जागृत होना चाहिए। तो प्रथु महाराज जो उनके पुत्र हैं, बेन के पुत्र हैं, तो अपने पिता के लिए क्या है, उनके कृत्यों से वो कैसे हैं, बड़ी शोकनीय दृष्टि में है, सोचनीय दृष्टि में है। क्यों सोच हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि धर्म विमोहितान, वो धर्म के प्रति कैसे थे, बिल्कुल मूर्ख थे, नादान थे, अज्ञानी थे, उन्होंने सारे वैदिक कृत्यों को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, उन्होंने स्पेशल जो है डिडोरा पिटवा दिया था राज के अंदर, कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता, कोई भी दान नहीं दे सकता, कोई भी तपस्या नहीं कर सकता। धर्म ही मनुष्य जीवन को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए उसका फाउंडेशन है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, वास्तव में धर्म ही जो है उसको कहां लेकर के जाता है, अपवर्ग तक लेकर के जाता है, मुक्ति के मार्ग तक लेके जाता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग तक लेके जाता है। तो ये क्या है, मनुष्य जीवन की उच्चतम अवस्था को ले जाने के लिए एक प्रकार का फाउंडेशन है, इसलिए व्यक्ति को धर्म के पथ का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी कहा है धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भी मैं आता हूं, और जो इस धर्म में रोड़ा बनता है परित्राणाय विनाशाय से दुष्कृतम, भगवान उसका वध भी करते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तव में अवध हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए, फिर भी भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। जैसे शास्त्र में कहा जाता है बच्चा है, स्त्री है, ये कैसे अवध हैं, इनका वध नहीं, ब्राह्मण है ये अवध, इनका वध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना का वध किया, वो स्त्री के रूप में किया था। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम ताड़का का वध किया, हालांकि स्त्री चाहे कैसी भी हो लेकिन फिर भी अवध है, लेकिन उन्होंने किया। अंत में दूसरा जो है उन्होंने अपने मामा का वध किया, मामा का वध करना चाहिए, मामा कब याद आता है? जब शादी के समय याद आता है। आज मामा होता तो कम से कम भात लेकर के आता। भगवान श्री कृष्ण ने जो है सबसे पहले जो है मामा का ही वध कर दिया। बोला भात की बाद में जरूरत है, पहले तुम गलत रास्ते पे कैसे चल रहा है। भगवान स्वयं आचरण करके दिखाते हैं। इसलिए धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म के पथ पर जो रोड़ा बनता है, चाहे अपना कितने भी स्वजन क्यों न हो, अपना क्यों ना प्रिय से प्रिय क्यों न हो, फिर भी भगवान उसका वध कर देते हैं, उसको नष्ट करते हैं। अपने भाइयों का, चचेरे भाइयों का वध किया, फुफेरे भाइयों का वध किया है, शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया, और अंत में अपने परिवार का भी, पूरे यदवंश का नाश कर दिया था उन्होंने। केवल किसके लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। किया था कि नहीं किया था? तो इसलिए महाभारत में आता है धर्मो रक्षति रक्षत, धर्मो रक्षति इति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। या धर्म के पथ पर चलोगे, कितना भी संकट क्यों ना हो, बड़े बड़े संकटों को धर्म पर चल करके व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है। और यदि कितनी भी सुविधा में हम क्यों ना रहें, कितनी भी सुरक्षा के बीच में क्यों नहीं रहें, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते तो उनकी दुर्गति होती देखी जाती है, उनको बुरी तरह से जो है मरते हुए देखा जाता है। सिकंदर ने पूरे उसको जो है क्या नाम है जीत लिया था, पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसी सिकंदर की जो मृत्यु हुई, बड़ी दयनीय स्थिति से मृत्यु हुई थी उसकी। तो इसलिए धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो है प्रथु महाराज इसलिए सोच कर रहे हैं क्योंकि बैन जो है क्या किया था, धर्म से हट गया था, उन्होंने धर्म कार्यों को बिल्कुल बंद कर दिया था। इतना जो है उन्होंने उत्पात मचा दिया था धर्म के प्रति कि जो साधु महात्मा थे उनका भी तिरस्कार करने लगा, साधुओं की, ब्राह्मणों की। जो वास्तव में ही ब्राह्मण एक सलाहकार होते हैं, एक योग्य शासन के लिए, एक शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, शांति व्रति के लिए, समाज के लिए एक मतलब योग्य ब्राह्मणों को रखा जाता था, जिनकी मति के अनुसार, जिनकी सम्मति के अनुसार एक राजा जो है शासन करते थे, तो समाज में शांति व्यवस्था रहती थी। और उन्होंने क्या किया था, उन ब्राह्मणों का ही तिरस्कार कर दिया। जब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो तुम धर्म के जो फाउंडेशन है, मनुष्य समाज की उन्नति का जो नियम है, उसको आप मत तोड़ो, ये धर्म जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान प्रसन्न होंगे तो सबको सुचारू रूप से चलेगा, यदि भगवान प्रसन्न नहीं है तो जो सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा जाएगी। तो अंत में जो है बैन ने जो है उन ब्राह्मणों को ही डांट मार दिया। बोला अच्छा, अरे तुम इस बात को नहीं पढ़े हो अभी तक, क्या नाम है सर्वदेवोमय नृप सर्वदेवोमय, जो राजा होता है सारे देवताओं का राजा में बात करता है, वो सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, अरे मेरे से भी बड़ा कोई भगवान हो गया। तुम तो योषिताम, जैसे एक जो है उस स्त्री के समान हो जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके और पर पुरुष से जो है प्रेम करती हो। बताइए क्या क्या उनको नहीं मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण लोग इतना उनका जब तिरस्कार किया तो इतना उनको गुस्सा आया कि उनको पनिश ही नहीं किया, क्या नाम है उस बैन को पनिशमेंट ही नहीं दिया, उसको बिल्कुल मार ही दिया। कभी कभी तो गुस्सा छोटी होती है, चलो दो चार चांटे मार देते हैं या कुछ गाली गलौज कर देते हैं, कुछ पदवी से हटा देते हैं, चलो ठीक है तुम किए इसका पनिशमेंट ये लो, लेकिन जब विशेष गुस्सा होती है तब क्या करते हैं, उसकी शकल भी नहीं देखना चाहते। तो इतना वो गुस्सा में आ गए थे कि जो है ब्राह्मण लोग उसका वध ही कर दिया उसको। तो इसलिए यहां जो बोल रहे हैं सोचन, इसलिए उनकी स्थिति सोचते प्रश्न उठता है कि भाई राजा बहन तो मतलब उनके पिताजी तो धार्मिक थे और उसकी उत्पत्ति भी यज्ञ से, जो खीर जो क्या नाम यज्ञ पुरुष यज्ञ किया था, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। बैन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो बैन की उत्पत्ति जो है इनकी जो माता थी वो सुनीता थी, सुनीता, और किसकी पुत्री थी, वो मृत्यु की पुत्री थी। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, स्मृति शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि पुत्री पिता के गुणों को धारण करती है और पुत्र जो है माता के गुणों को धारण करता है। तो इसलिए हालांकि अंग महाराज धार्मिक थे, लेकिन फिर भी ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी धार्मिक रीति से उत्पन्न किया था, यज्ञ करके, यज्ञ से यज्ञ पुरुष निकले, खीर लेकर के जो सुनीता को दी गई थी उससे गर्भ धारण की और उसके बाद में जो है बहन की उत्पत्ति हुई। फिर भी वो नास्तिक हो गया। क्यों नास्तिक हो गया? तो नास्तिक इसलिए हो गया, ये नीति है, यदि मां का कुल खानदान यदि ठीक नहीं है तो उसके जो बच्चे होंगे प्रायः मतलब उस कुल खानदान की रीतियों के अनुसार ही वो चलते हैं। जैसे यदि बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि भूमि ठीक नहीं है तो बीज क्या होगा, वो ठीक से जो है उसका उत्पादन नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर जो है बताए जा रहे हैं कि माता का जो कुल था वो मृत्यु के साक्षात पुत्र मतलब पुत्री थी, इसलिए उसके नाना या उसके मामा ये सारे मातलो नराणाम क्या है नरह मातुला कर्म, अर्थात जो पुरुष होता है या जो बच्चा होता है मामा के मातुल कर, मामा के जो है उसको कार्य क्रियाकलापों को धारण करता है। तो उन्होंने सुनीता के गुणों को धारण किया था या मामा के गुणों को धारण किया था, नाना के गुणों को धारण किया था मृत्यु को। तो इसलिए वो कैसा निकला, इतना सब कुछ होकर के भी पूरा दुष्ट निकला। इसलिए शादी विवाह में विशेष करके देखना चाहिए पुरुष स्त्रियों को कि जो है उनके परिवार खानदान कैसे हैं। यदि परिवार ठीक नहीं है तो संपन्न परिवार यदि शादी को ठीक से हमने नहीं देख करके किया लगन और उसके संस्कार ठीक से न मिला करके नहीं किया तो हमारे संपन्न परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। और यदि उसका कुल खानदान अच्छा है तो यदि हमारा उजरा परिवार भी क्यों ना हो उस कन्या के द्वारा हमारा परिवार जो है सुसंपन्न भी हो सकता है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए शादी विवाह में विशेष करके जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह जैसे बोलते हैं ना वो सब नहीं होना चाहिए। फट सुनाई फिर बाल में फट सुनाई फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर वो भी नहीं होना चाहिए। शादी जी अभी बारात में गए कुछ दिन बाद में सुना जी वो तो डिवोर्स ले चुके हैं, वो तो मतलब तलाक हो गया उनका। अरे अभी तो हम गए थे शादी में गए थे उनके विवाह में, वो तो तलाक हो गया उनका, क्या फायदा किए आप बताइए। तो ये बहुत चल रहा है, बहुत समाज में लगभग 80% ये केस बढ़ते जा रहे हैं तलाक के, क्योंकि ये सारा चीज हमारी समस्याएं, हम अपने आप समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कुछ बोलने के लिए हम जो है घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम बहुत कुछ पीछे रह गए। तो हम सिद्धांत ये है, दोहित्र आदीन रिते मृत्यु, दोहित्र मतलब पुत्री का पुत्र है तो उसके जो मामा हुए या नाना हुए वो मृत्यु है, उनका जो है उनके गुणों को अर्थात माता के परिवार वालों के गुणों को उसने धारण किया इसलिए नास्तिक हो गया। इसलिए वो क्या किया जा रहा है, शोक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जैसे उसमें धर्म विमोहिता, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बहन ने जो है धर्म को अपनाया नहीं, बोला धर्म की कहां जरूरत है, धर्म करने से क्या मिलेगा। तो शास्त्रों में कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है तो अर्थ की प्राप्ति होती है उसे, धर्म करने से ही अर्थ मिलता है। अर्थ जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप धर्म नहीं करोगे, धर्म करने से अर्थ मिलता है। तो बैन ने कहा अपना जो है सिद्धांत नास्तिक सिद्धांत निकाला, अरे भाई अर्थ की तुम बात करते हो, हम इतनी सारी फैक्ट्रियां इतना सारा औद्योगिकरण लगा देंगे कि पैसों की धर्म की धन की क्या होगी, वर्षा होगी, जितना चाहिए धन ले लो, उसकी मति थी। जैसे आजकल नास्तिकों की इतना सारा फैक्ट्री ये सारा, धर्म पर कोई जोर नहीं है उनका, भौतिक साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जाए इस पर जो है जैसे इस बैन की जो है मति थी ऐसी मति चल रही है। तो धर्म धर्म से अर्थ मिलता है और अर्थ से हम क्या कर सकते हैं, धर्म अर्थ काम, अपनी जितनी जरूरत है अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन बैन का सिद्धांत क्या है? बैन का सिद्धांत यह है कि हम जो है इतना सारा औद्योगिकरण करेंगे जिससे हमें धन भी मिलेगा और इतने सारे भोग विलास के इंद्रिय तृप्ति के साधन हम समाज में लागू कर देंगे जिससे क्या होगा उनके काम की पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें जो है आगे चल करके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि वास्तव में धर्म जो है समाज में शांति लाता है। धर्म जहां है वहां समाज में शांति रहेगी, उपद्रव नहीं होगा। लेकिन इसका बैन का कहना था भाई शांति अशांति तब होगी जब लोगों को हम क्या नाम है भोग विलास से दूर रखेंगे, उनको ऐसी सुविधा न दें जो उनकी इंद्रिय तृप्ति में कुछ कमी आ रही हो। हम लोग इतना उनको इंद्रिय तृप्ति देंगे कि लोग इतना भोग करेंगे कि अपने आप ही वो शांत हो जाएंगे, या तो मर करके शांत हो जाएंगे या बीमारी लग करके शांत हो जाएंगे। तो धर्म अर्थ, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम की पूर्ति होती है। लेकिन बैन का कहना है काम इतना इतनी सुविधाएं देंगे कि जितना चाहे इंद्रिय भोग करो। और अंत में मोक्ष, मुक्ति। तो बोला मुक्ति की जरूरत कहां रही? अरे मर करके तो सब यही नष्ट हो जाता है, फिर मुक्ति करके करेंगे क्या हम? ये जो है नास्तिक बैन का सिद्धांत है। लेकिन प्रथु महाराज का सिद्धांत था। प्रथु महाराज बोल रहे हैं वर्ग स्वर्ग अपवर्गाणाम प्रायणय एक आत्म हेतुना। प्रथु महाराज जो है उनका मानना है कि वास्तव में इस संसार के अंदर चाहे हम भौतिक उन्नति कर रहे हो या आध्यात्म उन्नति कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र जो उसका जो हेतु है उस साधन को प्राप्त करने का या उस सुविधा को प्राप्त करने का या उस सुख को प्राप्त करने का वो है भगवान। यदि भगवान नहीं चाहे तो कितना भी हम जो है सुख के लिए उपाय कर लें, लेकिन भगवान की यदि इच्छा नहीं है, भगवान का यदि सेंसन नहीं है तो हमें सुख मिल नहीं सकता। और यदि भगवान का सेंसन है, भगवान का परमिशन है, कितने भी हम निम्न परिवार में भी क्यों ना हो, कितने भी गरीब से गरीब परिवार में क्यों ना हो, वहां भी हम सुख से रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये जो है स्पष्ट कहा। अर्थात वर्ग, वर्ग का मतलब होता है चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब जो है इन सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। व्यक्ति की धर्म में भी मति लगती है। बहुत से लोग धर्म करना चाहते हैं। कंस ने थोड़ा सा धर्म करना चाहा, अपने जो है दामाद और अपनी बहन देवकी का रथ हांकने के लिए चाहा, लेकिन देवताओं ने उससे भी उसको भ्रष्ट कर दिया। तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि कंस जिसका तू रथ हांकने वाला है उसकी अष्टमी संतान तेरा वध कर देगी। अर्थात जब तक भगवान का सेंसर नहीं है व्यक्ति की मति धर्म में नहीं लग सकते और धर्म से अर्थ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति जो है कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन भगवान का यदि सेंसर नहीं है, भोग की अनेक सुविधा भी क्यों ना उसके पास में, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी डाल देंगे जिससे वो ठीक से खा पी भी नहीं सकेगा। आप देखते हैं कि जिनको बहुत सारी बीमारी हैं उनका खाना देखो तो थोड़ी मूढ़ी मूढ़ी खा रहे हैं या बिल्कुल सूखी चपाती हैं, वो भी जो है दाल देखेंगे तो बिल्कुल पानी कहीं जा रहा है और दाल तो है ही नहीं उसमें। क्यों भाई इतना अच्छा कुल खानदान इतना क्यों बोलते, क्या करें जी बीमार है, नहीं खाने देंगे। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे खाने नहीं दे सकते हैं। हर चीज के अंदर जो है भगवान का सेंसन है। आप देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर एक एक मतलब रोगी को, जिनका रोग कुछ नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर एक छोटे रोगी को भी नहीं बचा पाते हैं और एक छोटा डॉक्टर बड़े से बड़े रोग को भी खत्म कर सकता है। ये देखने में आया, देखने में मिलता है। मैं लखनऊ में था तो एक बार एक जो वहां के जो एक कांग्रेगेशन डिवोटी बता रहे थे, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक डॉक्टर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, लखनऊ में वो था और इतना विद्वान था, रोग के बारे में इतना प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसकी भगवान पे कोई आस्था नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उसके पास में केस आया, उसकी जो है क्या नाम है इतनी बड़ी, इससे भी ज्यादा है उसकी जो है क्या नाम थी, उसकी जो है क्या नाम है लाइब्रेरी थी जिसमें उसकी सारी पुस्तकें रखी थी। एक केस आया उसके पास में उसने उसका इलाज किया, लेकिन जो बीमारी थी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हुआ ये, वो बीमारी जो है इतनी बढ़ती गई कि वो रोगी जो है इतना जोर से चिल्लाता रहा, इतना जोर से जो है दूसरे जो रोगी थे उनको भी परेशान करने लगा, बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी लेकिन फिर भी वो रोग कंट्रोल नहीं हुआ। परिवार वाले भी दुखी, वार्ड वाले भी दुखी, उसके रूम वाले भी सब दुखी, डॉक्टरों की सब हालत खराब। क्या बात है भाई, इतना भयंकर रोग, कोई क्या इसमें ऐसा है जिसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अंत में यह निर्णय लिया गया कि इसको जो है किसी न प्रकार, क्योंकि इसकी बहुत दुख है, असहनीय दुख है, तो इसको मार दिया जाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जहर का जो है इंजेक्शन देना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ये निर्णय ले लिया गया। शाम के समय उन्होंने जो है कंपाउंडर वगैरह वो सब थे, मिलकर के मीटिंग किया और उन्होंने कहा कि देखो इसको पॉइजन का वो दे दो, इंजेक्शन दे दो, तो कम से कम ये शांति से मर सके, नहीं तो बहुत ये दुखी है। और हुआ यही, उसको जो कंपाउंडर आया और जो सबसे उत्तम कोटि का, जिसके टच करने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो, उस इंजेक्शन को दिया गया और इंजेक्शन दिया और उड़ा करके चला गया। जो है सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे दे दिया है। सुबह जो है वो जिसको मतलब जो मर जाते हैं उनको उठाने के लिए वो लोग आए और आकर के जो चादर उठी थी उसको जैसे उठाया और उठ करके वो बैठ गया। डॉक्टर साहब ने मेरे को बचा लिया, और मेरे को ऐसा इंजेक्शन दे दो डॉक्टर साहब, और मेरे को ऐसा इंजेक्शन दे दो, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। वो भागा जो है डॉक्टर के पास में, जाकर के डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं है, कैसे हो सकता है, उसको मैंने मृत्यु का इंजेक्शन दिया था। बोला नहीं, वो मरा नहीं, और बहुत अच्छा हो गया है, बहुत खुशी है, नाच रहा है वो, और बोलता है और मेरे को ऐसा इंजेक्शन दो। डॉक्टर आया, देखा तो पूरा आनंद से खुशी था, बोला डॉक्टर साहब आपने मेरे को बचा लिया, एक इंजेक्शन और दे दो मेरे को। उसी समय वो अलेक्जेंडर था, वो गया जाकर के लाइब्रेरी में पूरा बुक निकाली और सारी की सारी जो है नीचे डाली, उसमें आग लगा दी, पूरी लाइब्रेरी उसको जला दी। और उसने निर्णय निकाला कि भगवान जो करते हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसलिए धर्म, धर्म के पथ को हमें स्वीकार करना चाहिए। और धर्म क्या है, भगवान की भक्ति। आगे चल करके हम सुनेंगे, वास्तव में ही धर्म है भगवान की भक्ति। भक्ति करेंगे सब ठीक चलेगा, जहां भक्ति नहीं है वहां समस्या की समस्या है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर श्री मनंदेव।